राजनीति इससे जितने भी संबंधित व्यापार हैं वो सब असत है। भगवत भक्ति के अतिरिक्त सभी विषय असत हैं, इसलिए उनकी कोई भी बात ये वेश्या के समान है। शुद्ध शुद्ध अर्थों को प्रदान करने वाले शास्त्रों की आलोचना, शुद्ध शुद्ध अर्थ देने वाले जितने भी शास्त्र हैं उनका पठन पाठन नहीं करना चाहिए, ये भी असत आलोचना है। अर्थ की पिपाशा, अर्थ की लालसा, स्त्रियों का संग, पुरुषों का संग, गृहस्थ वैष्णव के लिए अपनी पत्नी में भी अत्यंत आसक्ति रखना भोग की लालसा से, ये भी असत कथाएं हैं। इन सब असत विषयों का आसक्ति पूर्वक अनुशीलन करने का नाम असत वार्ता है। आसक्ति, आसक्ति माने मोह रख करके जो की जाती है पाने की लालसा से, ये सभी असत वार्ता है। सुमति किसको कहते हैं? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति प्रियता अंकित यदि लभ्यते तत्र लौल्यम मूल्य में कलम जोन कोटि सुख करें। यदि किसी की किसी भी प्रकार से गुरु वैष्णव की कृपा से कृष्ण की सेवा करने की प्रवृत्ति हृदय में जन्म ली है, ये सुमति है। कृष्ण की सेवा की वासना किसी प्रकार से हृदय में यदि जग गई तो यह है सन्मति। इस मति को असत वार्ता रूपी वेश्या पथ से भ्रष्ट कर दे, इसीलिए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और मुक्ति की स्पृहा, इसको व्याकरा कहा, व्याकरी भक्त स्वामी सिंधु में भी ऐसा कहा गया है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जाव पिशाची हृदय भक्त। भक्ति और मुक्ति की पाने की इच्छा को रूप गोस्वामी ने पिशाची कहा। जब तक ये पिशाची हृदय में रहेगी तब तक भक्ति सुख कभी भी नहीं। हम लोग जो कुछ करते हैं किस लिए कर रहे, मूल उद्देश्य क्या है? भक्ति पाने के लिए पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं या संसार का काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे? भौतिक सुखों के लिए। तो यह सब बता, यदि भक्ति को जानने के लिए ये सब हम पढ़ेंगे लिखेंगे कोई कुछ करेंगे तब तो ठीक है। इसलिए यदि भुक्ति और मुक्ति की इच्छा है तो ये पिशाची है। जैसे पिशाची आदमी को बर्बाद कर देती है, उसके सब मति को, मति माने कृष्ण के सेवा करने की जो वासना है इसको चलो, इसलिए इसको दूर रखना चाहिए। श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निवृत्त चेतसाम ऐसा मोक्षा है भक्ता नाम न कदाचित स्पृहा भवे। यदि कोई कृष्ण के चरणों की अमृत का सब समय पान करने वाले हैं, ऐसे कोई भक्त हैं, ऐसे लोगों को मोक्ष के लिए कभी भी इच्छा नहीं होती, भोगों की इच्छा नहीं होती, इसलिए इनसे निष्क्रिय रख करके वो भगवान का भजन करता है। हमने चैतन्य चैतामृत आदि चतुर्थ अध्याय आरंभ किया था बहुत दिन पहले, तो उसका छूट गया था। हमने चैतन्य महाप्रभु जी के आविर्भाव का कारण बतलाया, जिसमें मैंने पहले बतलाया था जो धर्म का प्रवर्तन करने के लिए महाप्रभु जी का अवतार, किंतु यह भी गौ का है। युग धर्म प्रचार क्या है? हरिनाम संकीर्तन, इसके द्वारा युग धर्म का प्रभाव, आश्रित प्रवृत्तियों का विनाश होगा और सब वृत्तियों का उदय से। इसलिए गीता का जो है परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय भगवान। धर्म संस्थापन क्या है? कृष्ण नाम कीर्तन। तो ये चैतन्य महाप्रभु इसके लिए आए, किंतु ये गौण है। फिर बतलाया महाप्रभु जी अद्वैताचार्य ने बुलाया, तुलसी पत्र और गंगा जल देकर के निवेदन कर, वो महाप्रभु जी प्रसन्न होकर के कृष्ण उस समय में किस लिए अद्वैताचार्य के द्वारा या किसी भी अवतार के द्वारा यह काम नहीं होगा। कलयुग है वो कलयुग, कोई भी उनकी चित्त वृत्ति को बदल नहीं सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी को बुलाया तो हुआ है, ये भी कारण है, किंतु ये मुख का गौण है। और तीसरा बतलाया प्रेम प्रदान करने के लिए अनपिचरिंग चिरा, अर्थात जो प्रेम एक कल्प तक नहीं हुआ, नहीं दिया किसी को, किसी भगवत अवतार में चैतन्य महाप्रभु पधारे और उस प्रेम को दिया अनपिचरिंग चिरा। वो इसको उन्नत उज्ज्वल रस को देने के लिए जगत में वो पधारे। इसके विस्तृत व्याख्या हमने की और बतलाया कि ये भी मुख का गौंग है, ये तीसरा। और चौथा बतलाया प्रेम के दो पालू हैं, एक है मिलन और दूसरा है विरह, एक संजोग एक विप्रलंब। इन दोनों पालुओं को अच्छी तरह से आस्वादन करने के इसी में आया राधा या प्रणय महिमा की द्विषा। राधा जी का कृष्ण के प्रति प्रणय कैसा है, दूसरा कृष्ण की वो माधुरियां जो सबसे अधिक श्रीमती राधिका जी आस्वादन करती हैं वो कैसी है, और उन माधुरियों को आस्वादन करके उनको कैसा सुख होता है, इसको आस्वादन करने के तात्पर्य यह। प्रेम भी दो प्रकार का, प्रेम के दो, एक विषय एक आश्रय होता है। कृष्ण प्रेम माने प्रेम के कृष्ण विषय है, वो समस्त रसों को आस्वादन करते हैं, और आश्रय है श्रीमती राधिका जी सबसे श्रेष्ठ। कृष्ण के इन माधुरियों को राधिका जी सर्वश्रेष्ठ रूप में आराधना करती है, आस्वादन करते। कृष्ण इसे वंचित रह जाते हैं, प्रेम आस्वादन करते हैं किंतु राधिका जी को कैसा प्रेम में आनंद होता है इस चीज को समझ नहीं पाते। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस सुख को समझने के लिए राधा जी का भाव और उनकी कांति लेकर के ये जगत में आए। ये मुखों का मुख्य ये कारण, इस चीज को चैतन्य चैतामृत में चतुर्थ में वो बतला रहे हैं, उसी को हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। सही राधा भाव लैया चैतन्य अवतार, जुग धर्म नाम प्रेम पहला परिचय। मुख्य उन्ती चीजों को आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। कृष्ण ही हैं, रसिक शेखर हैं, किंतु करुणा से वो चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेकर के युग धर्म नाम प्रेम का प्रचार किया। यह नाम प्रचार अपना कार्य नहीं था किंतु फिर भी किया। ये किसका काम है, महाविष्णु का, फिर भी उन्होंने किया। ऐसे मालूम पड़ा चैतन्य महाप्रभु जी कर रहे हैं किंतु किया नहीं, किया ये उनके भीतर में रहने वाले महाविष्णु ने किया। सही भाव निज वांछा कलर पूरा, अपने जो भाव हैं सही भावे, कौन भावे, नाम प्रेम के प्रचार के माध्यम से अपनी वांछाओं को पूरी। पुरी में गए या बिंदा यहाँ थे नवदीप, रास्ते में आते समय दक्षिण में जाते समय नाम प्रेम का प्रचार करते हुए अपने भावों का उसी के माध्यम से आस्वादन, विशेष करके गंभीरा में। अवतारे से ही पांचा मूल कारण, अतः राधा भाव का आस्वादन करना ही उनकी समस्त इच्छाओं का मूल था। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं ब्रजेंद्र नंदन, वे स्वयं रसमय मूर्ति है। रसमय मूर्ति माने क्या, शांत दास सख्य बासल और मधुर, ये रतियां हैं। इन रतियों में और कुछ सामग्रियों के मिलने से तब वो भक्ति रस कहलाता है। उस रस पांचों के ये मूर्तिमान विग्रह हैं विषय के रूप में और साक्षात श्रृंगार हैं। श्रृंगार माने क्या? यहाँ श्रृंगार की मूर्ति, अतः तो रस की मूर्ति है साक्षात। यदि कृष्ण को हटा दिया जाए केवल जसोदा जी, नंद बाबा, सखा लोग रहे, दास लोग रहे, गोपियां रहे, तो भी रस नहीं, और गोपियां भी नहीं रहे और ये लोग भी नहीं, तो भी रस नहीं। तो ये रस ही मूर्ति है, सही रस आस्वादित कैदा होता है अनुसंग कैद सब रसे प्रचार। कौन सा रस का आस्वादन करने के लिए? राधा भाव और उनकी कांति लेकर के आए। किंतु अनुसंगिक रूप में सभी रसों का प्रचार किया। इस जगत में लोग सभी रसों के उनके हृदय में सत्व है। जगत में सभी जीव जितने हैं एक प्रकार के नहीं है, करोड़ों करोड़ प्रकार के, उनमें से सबको छांट दिया जाए तो सभी को मिलाकर के पांच प्रकार के भावों में उनको विभाग किया गया। शांत भक्त, दास्य भक्त, या शांत जीव, दास्य जीव, सख्त जीव, वात्सल्य जीव और मधुर, इन चारों पांचों में विभाग किया गया। सबको छांट कर, जैसे द्वारकापुरी में कृष्ण है, वहां पर सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि, रोहिणी मैया और देवकी मैया, वसुदेव पिताजी है, साथ ही में सांब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि उनके पुत्र हैं। पुत्रों में भी तरह तरह के भाव, अब इन पुत्रों के पुत्र भी हैं, नाती भी हैं, अनिरुद्ध के नाती हैं। तो वहां पर उनके सेवक वर्ग हैं, उनकी सखा मंडली है, सुदामा विप्र और प्रद्युम्न इत्यादि को उसी कोटि में लिया है। और वहां के नागरिक लोग हैं, उनके गुरु लोग वहां पर हैं, गुरु वर्ग हैं, उनसे वृद्ध उम्र में हैं, उम्र में छोटे हैं, उम्र में बराबर हैं, और वसुदेव इत्यादि के घर में, उग्रसेन के घर में नौकर चाकर भी हैं। और वहां पर ऋषि मुनि भी वहां पर, जैसे नारद ऋषि कभी कभी पहुंच जाते हैं, ऐसे हजारों ऋषि लोग द्वारकापुरी के आसपास में रहते हैं। कितने तरह के व्यक्ति हुए, अब इनको पांच ही भाग में कैसे विभाग करेंगे? जैसे सत्यभामा, रुक्मिणी और ऐसे भाव वाले जितने भी हैं उनको मधुर रस में रखते हैं एक प्रकार के। गुरु जी सांदीपनी मुनि इत्यादि, सांडिल्य या गर्गाचार्य, गर्गाचार्य उसमें उनके गुरु, और ऐसे जितने भी ब्राह्मण हैं और जितने भी माता पिता इत्यादि हैं गुरुजन, उनके ससुर सत्राजी इत्यादि हैं, वो सब वात्सल्य में रखते हैं। किस प्रकार का जितने सखा में सुदामा विप्र और भी बहुत से ऐसे हैं, उद्धव जी भी इनको रखा। पुत्र को किस कोटि में रखेंगे, नाती को किस में रखेंगे, किस ब्रह्मा इत्यादि आधिकारिक देवता हैं, शंकर इत्यादि हैं, किस कोटि में रखेंगे? इनमें से किसी को दास्य में रखेंगे, किसी को दास्य मिश्र सख्य में रखेंगे, सांब इत्यादि को लालन पालन करते हैं, ये लाल्य है दास्य के अंतर्गत, कोई पाल्य है जिसका पालन पोषण करते हैं, ब्रह्मा के सेवक हैं, किंतु सांब अथवा उनके पुत्र प्रद्युम्न के बराबर होंगे? शंकर जी भी यहाँ अधिकारिक सेवक हैं, उनके बराबर नहीं। इस तरह से कितने पांच प्रकार के जो सेवक हैं सब उनको सेवक पर रख लिया। ऐसे लोग संत में भी ऐसे ऋषि महर्षि लोग वहां आते हैं जिनका उनके प्रति ब्रह्म परम ब्रह्म का भाव है, लाखों प्रकार के उसमें उसमें स्वच्छ शांत और एक प्रकार का और है। उसमें भी शांत कितने प्रकार के हैं, स्वच्छ कितने प्रकार के हैं, ये सब मिलाकर के एक कोटि में रख लिया। उसी तरह से ब्रज में लाखों प्रकार के लोग सबको एक एक विभाग करके अंत में, तो इस तरह से सब रसों का प्रचार किया। किसके माध्यम से? विशेष करके रूप गोस्वामी के माध्यम से। किंतु उनका अपना भाव क्या था? राधा भाव लेकर के आए और सीताश्वाद, किंतु आनुषंगिक रूप में ऐसा कोई रस था नहीं जिसका उन्होंने प्रचार नहीं किया। विशेष करके रूप गोस्वामी के द्वारा भक्ति गोस्वामी सिंधु ने और उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथों में इसका विशेष रूप से प्रचार किया। जैसे रूप गोस्वामी को उन्होंने प्रयाग में शिक्षा दी, सनातन गोस्वामी को वाराणसी में उनको शिक्षा दी, सब इन्हीं विषयों का। विश्वे एषाम अनुरंजनेन जनयन आनंद मिंदीवर श्रेणी श्यामल कोमलई रूपनयन अनंगम अनंगो उत्सवम स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी भी अभित पतंग मिलितंगित श्रृंगार सखी मूर्तिमान मधौ मुग्ध हरि क्रीडति। रूप गोस्वामी ने, जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद में लिखा है, उसी को लेकर के यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसी के लिए विशेष करके उपमा के रूप में उदाहरण दिया है। कैसे कृष्ण अनुसंगिक रूप में सब रसों का प्रचार करते हैं किंतु अपना उद्देश्य क्या है? राधा भाव का स्वागत करते हैं। विश्व एषाम अनुरंजनेन, हे सखी, कोई गोपी एक अपने सखी को कह रही है, विश्व एषाम, विश्व माने समूह, एषाम समूह गोपी नाम समूह, समस्त गोपियों के जितने भी समूह हैं, जितनी भी गोपियां हैं, उन सबको अनुरंजन करने के लिए, अनुरंजन करने के लिए कैसे? अपने अंग के सौंदर्य से, गुणों से, इनके अंदर में प्रेम की तरंगे उत्पन्न कर, कैसा इनका अंग? इंदी इंदीवर, इंदीवर माने श्याम कमल। श्याम कमल कैसा होता है? श्याम रंग का, किंतु बहुत कोमल, बहुत शीतल, बहुत स्निग्ध, बहुत मधु। उसमें पराग होता है जिसके लिए भ्रमण मंडराता रहता है, इसलिए रसमय भी। ऐसे ही कृष्ण का जो सिंह अंग है, कोटि कोटि इंदीवरों के श्यामल के समान श्यामल, और श्यामल श्रेणी, श्रेणी मैंने नौ नौ मायन के रूप में, एक ही पुष्प नहीं, सततल है, कोई सहस्त्र दल है। एक कमल के फूल की अपेक्षा यदि हजारों फूलों की श्रेणी हो कमल की, और भी बड़ी सुंदर होती है, नौ नवायमान के रूप में। उसी प्रकार से कृष्ण का सौंदर्य, अंगों का सौंदर्य श्याम कमल के समान अत्यंत सुंदर, अत्यंत कोमल, ऐसे उनके कर कमल, कर के अंगुलियां इत्यादि हैं, उनके चरण कमल हैं, के द्वारा प्रणजंगनाओं के हृदय में प्रेम उत्पन्न करते हैं, उनको हृदय में प्रेम उत्पन्न करके मादकता उनके अंदर में उत्कंठा उत्पन्न कर देते हैं और स्वच्छंद रूप में श्रृंगार स्वरूप कृष्ण वसंत काल में रास के समय उनके साथ में क्रीड़ा करते हैं। यही उनका अपना कार्य है, गोपियों के साथ में क्रीड़ा। किस लिए? विषय का जो भाव है उसको आस्वादन करने के लिए, किंतु आश्रय वाला इससे भी अधिक है, इस चीज को आगे बतलाएंगे। कृष्ण चैतन्य गोस्वामी रसे स्वर, चैतन्य महाप्रभु रस के घर हैं, हवन है, भंडार है या समुद्र है, अशेष पीछे से कई रसास्वादन, इन तीन प्रकार की वांछाओं को पूर्ण करने के लिए गंभीरा में बैठकर दिन रात ब्रज की चिंता कर रहे हैं, कभी मिलन कभी वियोग, दिन रात इसी के अंदर में डूबे हुए। क्या चिंता करते हैं? है तो कृष्ण, किंतु स्वयं श्रीमती राधिका होकर के और कृष्ण के इन भावों को स्मरण कर रहे हैं और उसमें पागल हो रहे हैं स्वयं। से द्वारे परवर्ताय कलियुग धर्म, इसके द्वारा कलियुग का धर्म, किसके द्वारा? स्वयं तो प्रेमास्वादन किया और भक्तों को कीर्तन में लगाया और कभी कभी उनके कीर्तनों में शामिल हो जाते और इस तरह से कीर्तन का चारों तरफ में प्रचार किया और उसी के माध्यम से स्वयं रसास्वादन किया। चैतन्य दास जाने यही सब मर्म। चैतन्य महाप्रभु के जो दास हैं, कौन दास हैं? स्वरूप दामोदर, रामानंद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये उनके दास हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, कृष्ण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सब जितने हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती हरे गुरु पाद पद्म, ये सब जानते हैं उनकी महिमा। अद्वैताचार्य, नित्यानंद, श्रीनिवास, गदाधर, दामोदर, मुरारी कविदास, आर्य तो चैतन्य कृष्णेर भक्तगण भक्ति भावे से धरी सवार। मैं इस चीज को वर्णन करने के लिए वर्णन करना चाहता हूँ कि कौन सा रस का साधन करने के लिए ये आए महाप्रभु। मैंने साधारण सूत्र के रूप में वर्णन किया, अब इसको विशेष रूप से वर्णन करूंगा, जिसको जिसका अंदर में थोड़ी भी श्रद्धा है उस चीज को समझ और उसको ग्रहण करके ऐसा ही भजन करें। इसलिए अद्वैताचार्य उनके भक्त कौन है? दास नित्यानंद बदे प्रभु अनंग मंजरी और वे सदाशिव राज तत्व को जानने वाले हैं। श्रीनिवास श्री नारद जी, यद्यपि नारद वैकुंठ के पार्षद कहलाते हैं किंतु वो कृष्ण के ही पार्षद है। गदाधर जी, राधिका जी, दामोदर, दामोदर स्वरूप, रामानंद, मुरारी गुप्त, ये भी भक्ति रस के आचार्य हैं। ये हनुमान जी दास रस वाले, हरिदास जगत गुरु ब्रह्मा जी हैं, वेद इत्यादि सब ये उनके मुख से प्रकट किया। और भी जितने चैतन्य कृष्ण के भक्त हैं, हयाचेन हयबेन जतो जो हो गए हैं, अभी जो वर्तमान हैं और पीछे से जो भी होंगे, सबके भक्तों की चरण वंदना मैं करता हूँ। उन्हीं की कृपा से महाप्रभु जी की ये बातें समझ में आई। जो इनका किसी को अनादर करेगा, बस महाप्रभु को मानेगा, तो आप कुछ न्याय कुछ नहीं समझेगा। मुर्गी आधी मुर्गी, आधी मुर्गी माने मुंह का भाग मेरा है और पीछे का भाग तेरा है, या गाय का पीछे का भाग मेरा है और मुंह का भाग तुम्हारा है, तुम गाय को खिलाओ। उसने कहा जो ठीक है, तो वो खिलाता था, तो किसी से पूछा तो बताया जो ठीक है तुमको दूध कि व्यवसाय मैं करता हूँ। जब गाय को दुहने के लिए आए मटकी लेकर, उसमें गाय के मुख में थोड़ा सा मार गया, वो दो ही नहीं सकता। तो जब ही गाय को दुहने के लिए उसका भैया आता था बड़ा वाला, तो गाय को एक लकड़ी से मुख की तरफ में मार देता था, गैया उछल जाता। भैया जैसे तुम ऐसा क्यों करता है? तो मुख के संबंध में, मुख मेरा है, मुख के वो मैं जैसा को, तुम्हारा उसमें क्या है? तुम पीछे से दूर दूर लो, तो नहीं कर सका। तो ये अर्ध को कुटी न्याय या अर्ध गाभी न्याय, आगे को मानना पीछे को नहीं मानना, पीछे को मानना आगे को नहीं, सब अंगों को मानना पड़ेगा। इसलिए इन भक्तों को भी मानना पड़ेगा। महाप्रभु को समझने के लिए इन भक्तों की कृपा जरूरी है। इसलिए महाप्रभु अपेक्षा इन भक्तों का आदर सम्मान और भजन करना चाहिए, इसलिए इनकी वंदना होनी चाहिए। अब असल श्लोक पर आते हैं। षष्ठ श्लोक है कहिले आभास, छठवां जो श्लोक है इसका आभास मैंने बताया। अब मूल श्लोक पर हम चलते हैं। मूल श्लोक क्या है? श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशो वा अनयैव वा स्वादो जेनाद्भुत मधुरिमा की दृशो वा मदीय सौखंचस्य मदनुभवत की दृशं वेत्ति लोभा तद्भावाढ्य समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। राधाया प्रणय चेतन महापुरुष जिस भाव के लिए आए थे, इसी भाव को यहाँ पर अब वर्णन करें। अभी इस श्लोक को उन्हीं के शब्द में हम सुनेंगे जो क्या अर्थ बदला है। साधारण अर्थ यह है आखरी राधा जी की प्रणय महिमा कैसी है, जो कृष्ण को भी उन्मत्त करा देती है। कृष्ण का राधा जी के प्रति प्रणय है और राधा जी का कृष्ण के प्रति, इन दोनों में राधा जी का प्रणय कुछ अधिक गंभीर और भार है। कृष्ण के प्रणय से राधा जी का प्रणय, जिससे कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, इसका ये वर्णन करेंगे। वो कैसा राधा जी का प्रणय? प्रणय को समझने के लिए श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, भाव के बाद में प्रेम, स्नेह, मान, तप प्रणय, यह प्रणय महाभाव तप। इसलिए उनकी कैसी है? वा अलया एव अश्वाद्यो जेन अद्भुत मधुरिमा की दिशा वा मदीय। अलया एव, इसके द्वारा ही, अर्थात राधा जी के द्वारा ही मदीय अद्भुत मधुरिमा दृश जेन अश्वाद्य, जो ये राधिका श्रीमती राधिका जी किस प्रकार से मेरी अद्भुत माधुरियों का आस्वादन कर, अद्भुत माधुरी विशेष करके चार रूप माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी और लीला माधुरी। बेणी माधुरी ऐसी एक बंसी बांस की लेकर बजाया और समस्त लोगों का चित्त हरण कर दिया, पशु पक्षी कीट पतंग सभी लोग। कैसे? उसमें क्या माधुरी है? श्रीमती राधिका जी को भी आकृष्ट कर दिया और कितो क्या ऐसी लीला, जितने भी लोग हैं सभी मुग्ध हो जाते हैं। एक परब्रह्म होकर के मथुर रूप में किसी के घर में घुसकर गोपियों के मक्खन चुराना, एक छोटा सा बच्चा अत्यंत सुंदर और मंद मुस्कान के साथ में किसी के घर में घुस करके और मक्खन ले रहा हो, तो जिसके घर में गया उस सब लोगों का चित्त वो मोहित कर देगा। और यदि पकड़ लिया तो उसी के गोदी में बैठ करके, मैया तुम्हें तो ये अपना घर समझता था। तो अपना घर समझ करके मैं तेरे घर में आया और ये मक्खन को मैंने लिया तो ये तो मेरा ही घर है, तो वो हंस जाते मुक्त हो जाते। ये सब लीला नाथ यशोदा जी उनको बांध रही हैं, अब बंधे ही नहीं रहे, छोटी सी कमर, लाखों गज रस्सी आई और उसको बांध नहीं सकते। और फिर उनके सिर में बांधने वाली रेशम की रस्सी से ही थोड़ी सी दो हाथ की रस्सी में अखिल विश्व उनके इसमें मुख में देखा और दूध के लिए रो रहे। ये सब लीला माधु। इससे भी अधिक राशि इत्यादि की गोपियों के सहित में जो लीलाएं हैं ये सब लीलाएं ब्रह्मा शंकर ध्यान में नहीं पाते जिनको चरण कमल को और सब जगत को मुग्ध कर रखा है, तो उनको क्या जरूरत है राधा जी का पैर दबाए, उनको मनाने की क्या जरूरत है, उनको मना। ये भी एक लीला माधुरी है। और गुण माधुरी तो वर्णन किए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु और विशेष करके उज्जवल दिनमणि कृष्ण, कैसे वो ललित क्या ललित नायक इत्यादि, ये साधारण आदमी नहीं समझेगा। उनके परिकर कैसे सुंदर है, जिनके साथ में ये विनोद कर रहे हैं वो नंद यशोदा सखा लोग सुदाम सुदाम वसुदाम कृष्ण लवंग अर्जुन और सुबल मधुमंगल कोकिल, कैसे सखा है अद्भुत, कृष्ण से कम नहीं, कृष्ण कहते हैं हमसे कम नहीं, इनके साथ में लीला विनोद कर रहे हैं वो सखियां, इनके साथ में लीला विनोद कर रहे हैं, ये इनके परिकर है लीला की पुष्टि करने वाले। तो इनमें सबसे श्रीमती राधिका जी श्रेष्ठ है। तो ये श्रीमती राधिका जी इन अद्भुत माधुरियों को सबसे अधिक आस्वादन करती हैं। कृष्ण को देख करके सभी लोग पागल हो जाते हैं, एक हिरण पागल हो जाता है, एक मयूर पागल हो जाता है, एक गाय पागल हो जाती है, उसका बछड़ा पागल हो जाता है, गांव के रहने वाले पागल हो जाते हैं, नंद बाबा पागल हो जाते हैं। इसके बाद में यशोदा मैया पागल हो जाती है, गोपियां पागल हो जाती है, श्रीमती राधिका जी पागल। इसमें पागलपन किसका अधिक होता है, क्यों? कृष्ण का तो रूपी एक ही समान है सबके लिए, किंतु वो पागल क्यों होती है, किंतु प्रेम उनमें अधिक है, इसलिए वो ऐसी है कृष्ण की माधुर्य। और सौखन चाश्या उनको अनुभव करके, मधु अनुभवता माने अनुभव करके कृष्ण को कैसा सुख होता है, राधा जी को कैसा सुख होता है, इसलिए इन भावों को हृदय में संजोए हुए कृष्ण चैतन्य महापुरुष के रूप में आगत होते। ये तो हुई शाब्दिक हम लोगों की बात। अब ये आरंभ करें कृष्णदास का विराज गोस्वामी। पहले वो प्रस्तावना करते हैं, ये सब सिद्धांत भूल कहते ना जो, ये सब सिद्धांत जितने हैं जो अभी बतलाया तीन अत्यंत भू है। किसके लिए? संत रस के लिए एकदम, उसके सामने नहीं कहा जाए, दास रस के सामने भी नहीं, उनके ऊपर उन लोगों के समझ में नहीं आया, यहां तक कि सख और बात्सल्य के भी समझ में नहीं आने वाला है, उनके लिए भी निगूढ़ है। इन्हें सब लोगों के जितने भी परिकर हैं उनके, उन सब लोगों के लिए निगूढ़, निगूढ़ माने रहस्य, रहस्यपूर्ण है, कहते ना जुआ है। और जगत में यही लोग अधिक हैं, किताब भी लिखेंगे, किताब में भी व्यक्त करें तो वही लोग पढ़ेंगे, इसलिए ये लिखना उचित नहीं न कहना उचित है, इसका पाठ करना भी उचित नहीं, क्योंकि इसका अधिकारी नहीं, बहुत निकले, किंतु ये भाई बात है कृष्णदास कविराज को से ना कभी दे, जो इस विषय को जानते हैं और वो यदि न कहें कोई भी विश्व में खुद नहीं जान सकते। जो जानने का अधिकारी भी है वो भी नहीं जान सकते, तो फिर क्या होगा? जगत से ये चीज लुप्त हो जाए, फिर महाप्रभु का आना किस लिए? गोलोक में बैठे बैठे उनको ये रस नहीं है, वो तो है ही है वहां पर रस, ये तो जगत के लिए है। कोई पर बैठ करके आनंद से करते हैं, यहाँ अधिकारी नहीं आने की जरूरत है, उनके भक्त लोग भी नहीं करते। इसलिए ना यदि नहीं कहा जाए तो केहो यह अंत नहीं पाए, कोई सीमा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। कभी भी जन्म जन्मांतर में कोटि जन्मों में कोई लोग इस विषय को नहीं जानेंगे, यह राधा कृष्ण का प्रेम क्या है, राधा जी क्या तत्व है कृष्ण। और उनके भक्त लोग जो इसके विषय में जानते हैं वही बतला सकते हैं। और इधर कहना नहीं चाहिए क्योंकि अधिकारी है नहीं, तो क्या करूं? अतः वही कुछ बड़ी है। इसलिए इस विषय को मैं कुछ रहस्यपूर्णों के रूप में कहूंगा। रहस्यपूर्ण माने क्या? ऐसे कहूंगा जिसे मूढ़ लोग न समझे और जो रस के अधिकारी हैं वो लोग समझे, साधारण लोग नहीं समझेंगे। इसलिए कही किशु कल्याण निगुण, निगुण माने रहस्यपूर्ण शब्दों में, रहस्यपूर्ण भाव में उस चीज की अभिव्यक्ति। बुझे रसिक भक्त, रसिक भक्त लोग समझे, और ना बुझे मूढ़, मूढ़ माने अनाधिकारी लोग हैं वो लोग नहीं समझे। कते कितना बजा?
सवा सात।
आज अभी मैंने 7 बजे का 7:30 नित्यानंद फल को केशव सद्धानंद निगुण भाषा में निजी विषय रूप में मैं बतलाऊंगा। जैसे निगुण मैंने क्या, निगुण ऐसे वृंदावन मत जाना, यदि वृंदावन जाना तो केसी घाट में मत जाना, यदि केसी घाट में जाना तो वहां पर एक मंदिर है गोविंद जी का मत जाना, और किसी प्रकार से जाना उस मंदिर के पास परिक्रमा करके लौट आना, अंदर में मत जाना। मंदिर में जाना तो अंदर में चला भी गया तो दीवारों पर ये सब चित्र चित्र दे करके जाना, वो मंदिर में जो मूर्ति है उसको मत देखना,
भूल से मत देखना,
भूल से भी मत देखना। यदि देखेगा तो तुम्हारा ये जो सोने का संसार है, रसमय संसार है, ये सब दूर हो जाएगा, फिर याद ही नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जरूर जाओ वृंदावन, इसका ये निगूढ़ता था। मूढ़ कहेंगे क्या, ठीक है वो वृंदावन में जाने के लिए मना किया है, वृंदावन जाएंगे किसी काम से, बाजार हाट करके, बाजार इत्यादि करके और चीजों को लेकर के लौट आएंगे, केसी घाट में नहीं जाएंगे। और केसी घाट में ही यदि बाजार है तो वहां से करकर लौट आएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे। इसका मतलब है जरूर जाना चाहिए, ये निगूढ़ थी। मूर्ख लोग कहेंगे मत जाओ, वृंदावन जाना ही अन्याय है, वृंदावन में जाने के लिए अधिकार चाहिए, अधिकारी व्यक्ति ही वृंदावन में जाएगा और कोई नहीं जाएगा, वृंदावन में बास भी नहीं करे, किसके लिए कहा गया? ऐसे अनाधिकारी अधिकारी का, हाँ ये प्रमाणित व्यक्ति है, उन्होंने ये कहा कि वृंदावन में मत जाना, राधा कृष्ण की मूर्ति मत देखना, उनका भजन मत करना, ये ठीक है। भक्ति योग का लक्षण बतलाया, मद गुण सुखी मात्र महिषास गुहाशय अनुगति अभिछिन्ना यथा गंगा पुषौ हम बुधौ। लक्षण भक्ति योग से निर्गुण से उदारतम अहेतुक अप्यविता जा भक्ति पुरुषोत्तम। मेरे गुणों को सुनने मात्र से ही मैं जो जगत से बहुत ही रहस्य हूँ जगत के लिए, सर्व गुहाशय गुहा के अंदर में रहने वाला है, ऐसे हृदय के अंतर्तम कोण में छिपा हुआ है, किंतु मन तभी मेरे गुणों को सुनने के साथ ही साथ में मन की साधकों की मन की गति अविच्छिन्न भाव से जब लग जाती है, कैसे जैसे गंगा का पानी समुद्र में मिल जाएगा कभी रुकेगा नहीं, हजार लाख बांध बांध तो किंतु जरूर जाएगा किसी न किसी तरफ। यदि बेहद बंगाल में जमुना गंगा जी गिर रही है उसको बांध करके ले जाओ बांध दो तो वो दूसरी तरफ निकल जाएंगी, तीसरी इधर से निकल जाएंगी, जब किंतु मिलेंगी समुद्र में जरूर। उसी प्रकार से जब मन की गति अभिछिन्न रूप में कृष्ण के प्रति जो कि सब गुहाश है सब गुहाओं में है उनको यदि उनके प्रति लग जाती है तब ये तब लक्षणम भक्ति युगस्य निर्गुणस्य भक्ति निर्गुण निर्गुण माने किसी हेतु को कारण से नहीं बिना हेतु के ही जो पुरुषोत्तम है कृष्ण उनके चरणों में लग जाती है तो ये भक्ति। अभी हम लोग की ऐसी नहीं हुई चेष्टा कर रहे हैं इसलिए सगुण है अभी निर्गुण नहीं। यही भक्ति जैसे गंगा समुद्र में मिल जाती है अविच्छिन्न गति, ऐसा उदाहरण देकर के यदि बतलाना हो जाए किसकी ऐसी हुई है हनुमान जी की है, उससे भी प्रहलाद महाराज जी की गति है, नारद जी की गति है, उद्धव जी की गति है, अर्जुन की गति है, द्रौपदी की गति है, तो उसमें है किंतु जैसे समुद्र में अपने आप मिलने के लिए निरंतर एक मिनट का भी अंतर नहीं होता, वो इनके जीवन में थोड़ा सा कम है। यदि है भी तो प्रबल धारा नहीं है, इसलिए कहते हैं कहाँ है यह लक्षण देखा जाएगा तो गोपियों में है। जो जो उदाहरण दिया पूर्ण रूप से गोपियों में ये होता है, काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्जवल शुद्ध जैनो लगे, जैसे स्वर्ण सब मालिनताओं से रही हाथ में जला दो सोने को वो दमकने लगता है, उसी प्रकार से गोपियों का जो कृष्ण के प्रति कोई काम गंधहीन अहेतुक जो प्रेम है कोई उसका उदाहरण है ऐसा दूसरा का उदाहरण नहीं है। इसलिए बताया कि कैसे कृष्ण सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका है प्रिया शिष्या सखी दास, कृष्ण की सहाय कृष्ण की गुरु कृष्ण की बांधव कृष्ण की प्रेयसी और कृष्ण की प्रिया शिष्या सखी दासी, पुरुषों के लिए सहाय गुरु बांधव और गोपियों के लिए कृष्ण की ये प्रेयसी हैं, साथ साथ में गुरु भी हैं बंधु भी हैं साथ साथ में प्रिया, तो प्रेयसी और प्रिया में क्या अंतर, और फिर बतलाइए शिष्य और सखी, तो प्रेयसी सखी प्रिया और शिष्य और दासी। कभी कभी मालूम होता है ये पुनरुक्ति हो गई किंतु कोई भी पुनरुक्ति नहीं है, अलग अलग चीजें। अब इसी को बतलाएंगे। कृष्ण से अनुराग करने वाले बहुत से लोग हैं, उद्धव तक है और भी गोपियां हैं, किंतु श्रीमती राधिका में यह प्रेम पर पूर्ण रूप से है, किंतु कोई गोपियों की भांति प्रिय नहीं है। उद्धव जी प्रिय हैं। कृष्ण कहते हैं हमसे न्यून उद्धव नहीं है, अधिक क्या कहूं, ब्रह्मा जी हमारे उतने प्रिय नहीं है, शंकर जी हमारा पुत्र है ब्रह्मा वो भी हमारा उतना प्रिय नहीं,
शंकर
हमारे सखा है वो भी हमारे जैसे प्रिय नहीं, लक्ष्मी जी हमारी अंकशायनी है वो भी हमारे प्रिय नहीं, अरे बलदेव जी भी नहीं है जितने उद्धव प्यारे हैं।